ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी। बाबा ने क्या कहा? ये दुनिया एक बहुत बड़ा अभी रोगियों का अस्पताल है। तन के मन के रोग हर एक को लगे हुए हैं। चलो अगर तन का नहीं तो मन का जरूर होगा, मन का नहीं तो तन का जरूर होगा, या तो दोनों ही प्रकार के रोग होंगे, तन और मन। परंतु इनका कारण क्या है? आज बाबा ने वो कारण बताया है। सभी दुखों का कारण एक ही है और वो है देह अभिमान। वास्तव में सभी धर्मों में यही बात है। एडम ईव आदम बीबी बताते ना, पहले स्त्री पुरुष भगवान ने उनको रचा और उनको पैराडाइज में भेजा कि यहाँ का बहुत सुख लो, लेकिन एक बात उनको जरूर बताई कि ये एक वर्जित फल है, ये कभी नहीं खाना। तो हजारों साल तक तो वो सुखी रहे, लेकिन एक दिन शैतान आया और शैतान ने उनको कहा, अब भगवान का कहना मत मानो, ये वर्जित फल बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, आप जरूर खाओ। तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो वर्जित फल खाया, और जैसे ही फल खाया देह अभिमान में आ गए। तब तक देह ही अभिमानी थे, और जैसे ही देह अभिमान में आए सब दुख शुरू हुए और वो श्रापित हो गए। वो तो कहते भगवान ने श्राप दिया, वास्तव में ये रावण माया श्रापित करता है, और सब द्वापर युग से कैसे दुखी हो जाते। फिर बाबा आकर के संगम पर ये कैसे हम सब बच्चों का ये रोग मिटाते हैं, कैसे मिटाते हैं? ज्ञान और योग से। बड़ी इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। तो बाबा के बच्चे देही अभिमानी तो बनते हैं, लेकिन युद्ध चलती है। कभी फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, फिर देही अभिमानी बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये युद्ध है तुम्हारी इस समय, पर क्या अभ्य लक्ष्य हो कि हमें देही अभिमानी बनना हर वक्त। इसलिए बाबा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज बाबा ने विशेष कहा है कि बाबा के सामने कौन से बच्चे आने चाहिए, जो देही अभिमानी होकर बाबा के सामने बैठे। क्योंकि अगर देह अभिमान में है तो मन भटकेगा, तो मन भटकेगा तो सुस्ती आएगी, नींद आएगी, उबासियां देते रहेंगे। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे मेरे सामने नहीं बैठे। कौन से बच्चे बाबा के सामने बैठे? जो ज्ञान डांस करने वाले हो, जो उमंग उत्साह में बाबा की मुरली सुने। तो आज बाबा ने विशेष ऐसी आत्माएं बाबा के सामने होनी चाहिए, ये बाबा चाहते हैं, ये कहा है। तो मधु, तो बाबा की मुरली जब सुनते हैं तो कैसे सुननी चाहिए? उस ज्ञान डांस करना चाहिए। जो भी सुनाते बाबा, हम उसको अंदर ही अंदर धारण करें और उसकी खुशी लाएं, क्योंकि सारी मुरली हमेशा खुशी लाने की होती है, सावधानी की भी होती है, लेकिन उस पे भी बाबा का प्यार समाया हुआ है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 8/11/2025 है। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। तन की बीमारियां, मन की बीमारियां सब खत्म हो जाएगी। और तुम क्या बन जाओगे? डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाओगे। चढ़ाया नशा बाबा ने, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस कैसे करेंगे? कोई ये पैरों से डांस करने की बात नहीं है बाबा के सामने, लेकिन ज्ञान डांस, अंदर ही अंदर वो खुशी की डांस, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अब देखो, कोई भाषण कर रहा है, क्लास करा रहा है और सामने बैठे हुए सब झुटके खा रहे हैं, तो वो भाषण भी कैसा होगा, क्लास भी कैसा होगा। तो जब बाबा के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर बच्चे ज्ञान डांस साथ में करते हैं, खुशी में रहते हैं। हमारी दादी जानकी तो बस दादियां तो हम देखते थे, बाबा के सामने जैसे बैठती थी यहाँ तो कैसे ज्ञान डांस करती रहती थी। दादी जानकी तो सारा टाइम सिर हिलाती रहती, मुंडी हिलाती रहती थी। तो बाबा देखते थे उनको कि ये सारा टाइम मुरली सुनते समय से मुंडी हिला रही है। तो एक दिन बाबा ने उनको बुलाया, तुम सिर तो हिलाती हो, बहुत खुशी में रहती हो बाबा के मुरली सुनते समय, ये दादी जी ने बताया था। तो लेकिन तुम जो सुनती हो वो दूसरों को सुनाती हो? तो कहा, क्योंकि दादी बहुत शांत नेचर की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। तो दादी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो किसी को नहीं सुनाती हूँ। तो बाबा ने कहा, किसी को सुनाती नहीं हो? बाबा इतना ज्ञान डांस करते, तुम खुशी में तो रहती, बस सुनाती क्यों नहीं हो? क्या तुम पिजिन हो? हाँ, तुम क्या कबूतर हो? कबूतर क्या करता है? सारा टाइम उसका सिर नीचे होता है ना, ऊपर नीचे करता रहता है, तो बस बोलता नहीं है। परंतु बाबा ने उस दादी को कहा, तुम क्या कबूतर हो? तुमको तो ज्ञान डांस करना चाहिए, तुमको तो औरों को तो सुनाना चाहिए। तो जैसे बाबा ने कहा, बस वही जाके सुनाती थी दूसरों को। तो बाबा ने पूछा, सुनाती हो? कहाँ, सुनाती हूँ बाबा, आप जो मुरली चलाते मैं दूसरों को वही सुनाती हूँ, रिपीट करती हूँ। तो बाबा ने कहा, क्या तुम क्या तोता हो? तोता क्या करता है? सुनता है और फिर वही सुनाता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता। तो बाबा ने उसको कहा, नहीं बच्ची, तुमको अपनी बुद्धि भी चलानी चाहिए, विचार सागर मंथन भी करना चाहिए, फिर उस वो सुनाओ। तो सच में देखो दादी कैसे, हाँ, कितना ज्ञान डांस करती थी, कैसे मुरली सुनाती थी, क्लास कराती थी, विचार सागर मंथन कितना करती थी। तो देखो बाबा कहते हैं, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है, ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। इधर उधर देखेंगे तो क्या, वो बुद्धि में थोड़ी मुरली बैठेगी, ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, टीचर को कहेंगे बाबा कि तुमने यह किसको लाया है, जो सामने बाबा के बैठे हैं और ऐसे इधर उधर देख रहे हैं, ये किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो फिर से आकर हमको सुख गनेरे दो। हाँ, ऐसे बुलाते हैं, हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है। क्योंकि क्यों दुखी है? क्योंकि ये कलयुगी पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख तो हो नहीं सकता जितना नई दुनिया नई घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्षों का होता है? समझो एक 84 लाख और एक जन्म ही 100 साल का हो मानो, तो 84 लाख तो मानो कितने फिर जन्म हो जाएंगे। तो यानी कितना एक एक ही तो क्या क्या हो, तो एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? तो 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, केवल बाबा तो दूर देश का रहने वाला नहीं ना, हम भी उसी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परमधाम में याद करते हैं, कहते ना ऊपर वाला, ऊपर वाला जाने, तो ऊपर देख करके हम भगवान को याद करते हैं। तो बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराए देश में आए हैं, शिव को बाबा कहेंगे, अब रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे ना, बाबा माना पिता, तो रावण को तो पिता नहीं कहेंगे ना, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? तो रावण की क्या महिमा करेंगे, तो 5 विकार है उनकी क्या महिमा करेंगे, तो 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो विश्व का मालिक बनना है तो क्या करो, सबसे पहले देह अभिमान को छोड़ो। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहां भी ऐसे नहीं समझेंगे, क्या नहीं समझेंगे और सत्संगों में, कि हमको बाबा यानी भगवान आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। ऐसे तो कोई नहीं वहां सोचते हैं और सत्संगों में, राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए। अब इसमें बाबा ने कितना बड़ा तर्क दिया, राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए, राजा ही होना चाहिए ना। अब बैरिस्टर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा किसी को, तो खुद भी तो डॉक्टर होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं राजा बनाने वाला तो राजा ही होना चाहिए ना, सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएगा। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? अब उसको डबल सिरताज बनाना है तो वो कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इस समय तो कोई डबल सिरताज है नहीं जो हमको पढ़ाए और डबल सिरताज बनाए। इसलिए क्या कर दिया मनुष्यों ने, इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया गीता में, कि वो डबल सिरताजधारी है, वो राजयोग सिखाएगा और डबल सिरताज बनाएगा, तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया, परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएगा? दुनिया में तो ठीक है, डॉक्टर पढ़ा करके डॉक्टर बनाएगा, बैरिस्टर पढ़ा के बैरिस्टर बनाएगा, लेकिन डबल सिरताज बनाने लिए डबल सिरताज कैसे पढ़ाएगा? श्री कृष्ण तो डबल सिरताज है, परंतु वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है, उसको तो ये ज्ञान है ही नहीं, मां तो भाव कहते हैं। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएगा, जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं, न लाइट का ताज है न रतन जड़ित ताज है। लेकिन कई ना मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर भी ताज रख देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं, वो कभी राजाई पाते नहीं, शिव बाबा कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं, खुद नहीं बनते पर औरों को बनाते हैं डबल सिरताज। बाबा कहते हैं हम अगर राजा बनता, अगर शिव बाबा राजा बनता डबल सिरताज बनता तो फिर रंक भी बनना पड़े, क्योंकि जो डबल सिरताज बनते हैं वो फिर रंक भी बनते हैं, फिर मुझे भी रंक बनना पड़े। भारतवासी राव थे, राव माना राजा, भारतवासी राव थे अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। तो जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। वैसे मानो मान्यता यही है ना कि जो जैसा होगा वो आप समान बनाएगा, लेकिन बाबा हमको निराकार रूप में तो आप समान बनाते ही है ना, लेकिन विश्व का मालिक तो बाबा कहते तुम बच्चे ही बनते हो। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा, सन्यासी भी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे। कोई कहे सन्यासी के पास जाए और मुझे और कहे कि हाँ मुझे अपने जैसा बनाओ, मैं अच्छा ठीक है ये जो कपड़े पहन के आए हो ये उतार करके कफनी पहनो, गिरवे वस्त्र पहनो, हाँ तो गिरवे वस्त्र पहन लिया, हो गया सन्यासी। तो सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे। बाबा कहते हैं तुम गृहस्थी, अब वो सन्यासी तो फिर फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कोई गृहस्थी कहे मैं फलाने का फॉलोअर हूं, परंतु वो तो सन्यासी है और तुम तो गृहस्थी हो, तो तुम फॉलोअर कैसे हो, तो फिर तुम फॉलोअर तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, उस समय शिवानंद का बहुत था बाबा के दिनों में, डिवाइन लाइफ सोसाइटी उनका, उनकी संस्था का नाम था डिवाइन लाइफ सोसाइटी, अभी भी हरिद्वार में बहुत बड़ा है उनका और उनके भी कई आश्रम है, तो बहुत उन्होंने सन्यासी बनाए थे। तो कहते फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वो सन्यासी तो माथा मुड़ाने वाला है, वो तो माथा मुंडा हुआ था, गिर हुए कपड़े पहनता था, तुम तो फॉलो करते नहीं हो, ऐसे ही कह देते हो मैं उनका फॉलोअर हूँ, तुम तो फॉलो करते नहीं हो तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो। फॉलोअर तो वो जो झट अपना उतार कफनी पहन ले, गिरुआ वस्त्र पहन ले। तुम तो ग्रस्त में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर कैसे कहलाते हो। गुरु का तो काम है सदगति करना, गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, वो गुरु फिर क्या करेगा, अपनी लॉकेट देगा, अपना लॉकेट देगा, हाँ तो कहेगा क्योंकि गुरु बिना गति नहीं, तो इसीलिए फिर वो गुरु को ही याद करना शुरू कर देते हैं। तो गुरु तो ऐसे नहीं कहेगा फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ, क्योंकि वो ही सदगति देगा तो फिर और किसको याद करो ये क्यों कहेगा, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने लिए भी युक्ति चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई मुक्ति धाम में जा सकता, युक्ति चाहिए। क्या युक्ति बाबा बताते हैं ना, कैसे मुझे याद करो, पाप भस्म करो, ये युक्ति है। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया, आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल, रू, निराकारी रू सोल, शरीर है पांच तत्वों का बना हुआ, आत्माएं कहां से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से आती है, वहां बहुत आत्माएं रहती है, उनको कहेंगे परम धाम को क्या कहेंगे, जहां निराकारी आत्माएं रहती है उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है ना। किसी ने पूछा, आप कहते हो परम धाम को याद करो, लेकिन हमने परम धाम तो देखा नहीं है, तो कैसे याद करें? तो हमने कहा कैसे नहीं देखा है, आप तो वहीं के रहने वाले हो। अब कोई बच्चे को माँ कहती है कि तुम गांव में पैदा हुए थे, अब वो गांव में पैदा हुआ, अभी तो शहर में रहता है, उसको गांव का पता ही नहीं है, तो माँ कहेगी तुम गांव में रहते थे, वहीं पैदा हुए थे, तो कहेगा मैं कैसे मानूं मैं गांव में पैदा, मैं तो देखा ही नहीं है। तो माँ कहेगी अरे बेटा तुम पैदा ही वहां हुए थे, हाँ तो भले कहो देखा नहीं, याद नहीं है, पर पैदा तो वहीं हुए थे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम तो परम धाम से ही आए हो, तो वो याद क्यों नहीं ठहरना चाहिए, तुम तो वहीं के रहवासी हो। तो बाबा कहते हैं हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले, यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में क्या है जो वहाँ परम धाम में नहीं है? इस नाटकशाला में सूर्य चांद सितारे आदि बतियां हैं, कोई गिनती तो कर न सके, कितना दूर है वो परम धाम जो सूर्य चांद सितारों से भी पार है, उसकी तो कोई गिनती नहीं कर सकता है। तो कोई गिनती कर न सके कि ये नाटकशाला भी कितने माइल्स की है, न वो परम धाम की गिनती कर सकता है, न इस जो ब्रह्मांड ये जो सृष्टि है या ये जो कॉन्स्टिलेशन या इतने ग्रह है इतने सितारे, उसको भी कोई गिनती नहीं कर सकता, कितना दूर तक जाएंगे तो फिर वापस आना है उनको, तो इसलिए इतना पेट्रोल चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो भी इतना दूर नहीं जा सकते, चाहे कितना भी कहे चांद तक गए मंगल ग्रह तक या जो भी, बाबा कहते नहीं जा सकते, बेहद है। तो परम धाम तो कितना बेहद होगा, कितना दूर होगा। तो बाबा कहते हैं इस नाटकशाला में सूर्य चांद सितारे आदि बतियां हैं, कोई गिनती कर न सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए, इतना दूर तो नहीं जा सकते हैं। हाँ साहब ये भी बेहद है, वो समझते हैं इतने माइल्स तक फिर लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे, इसलिए इतना पेट्रोल चाहिए तो आगे नहीं जाते हैं। समुद्र का व आकाश तत्व का भी अंत पा नहीं सकते, परम धाम तो छोड़ो हाँ, आकाश तत्व का भी अंत नहीं पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं समुद्र का भी अंत नहीं पा सकते हैं, अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं, अंत बाबा अपना देते हैं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मैं कौन हूँ कहाँ से आता हूँ, ये बाबा अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है, कितना बड़ा रॉकेट है, तब आत्मा क्या एक रॉकेट, कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे, आत्मा शरीर से तो नहीं उड़ सकती है ना, तो पर आत्मा जब रॉकेट बन जाएगी तो एक सेकंड में शरीर से उड़ गई, तो कितनी देर लगेगी आत्मा को उड़ने में। आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लगेंगे लग पड़ेंगे, कितना छोटा रॉकेट है, आत्मा भी एक रॉकेट है, अभी भेंट करो उस रॉकेट और आत्मा रूपी रॉकेट, हाँ कितना अंतर है, कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे, सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं, दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, वो सितारे जो हम देखते हैं आकाश में, वो इतने छोटे थोड़ी है, वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ हमको क्योंकि बहुत दूर है इसीलिए हमको इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो बाबा मिसाल देते हैं, दूर के सितारे इतने कितने छोटे देखने में आते हैं, तो बहुत बड़े। जैसे क्या मिसाल दिया होगा बाबा ने, जैसे तुम पतंग उड़ाते हो, तो पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है पतंग। हाँ, जब पतंग का उत्सव होता है ना, सब पतंग उड़ाते रहते हैं और सब इतना दूर दूर पतंग जाते, इतने छोटे 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 पतंग दिखाई देते, पर होंगे तो थोड़े बड़े ना, इतने छोटे थोड़े होते हैं। तो कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है पतंग। तो बाप कहते हैं, तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, पर आत्मा नहीं ऊपर गई तो कोई वो बड़ी है और फिर छोटी दिखाई देती, नहीं वो तो है ही छोटी। बाप कहते हैं, तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, बहुत तीखी है, बहुत फास्ट उड़ती है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। कितना किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी, पहुंच जाएगी लंदन एक सेकंड में। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना, तो बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, सब सेकंड की बात है, वो आत्मा भी एक सेकंड में चली जाएगी और बच्चा पैदा हुआ, और पिता अगर करोड़पति है तो बच्चा जन्म लेते ही पिता उसके नाम पर बैंक अकाउंट खोल देगा और 1,00,000 रुपया डाल देगा। बच्चा अभी पैदा ही हुआ है तो जन्म से लखपति हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो गया, तो तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाबा के बने सो विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे, यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो, अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, पर पास होना चाहिए तभी तो डबल सिरताज बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, चलो नापास भी हुए तो भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना, अब ये भी बड़ी बात है, भगवान को पिता कहते हैं तो उसका भी कोई पाठ होगा ना इस सृष्टि पर। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना, अभी पाठ बजा रहा है वो फादर, अभी पाठ बजा रहा है। उनको भगवान भी कहते हैं जो कांटों से आकर के फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। भगवान हमको क्या से क्या बनाते हैं वो सोच कर ही बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस पराए देश में, बाबा आया हुआ है इस पराए देश में, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहां रहती है, यहाँ फिर पाठ बजाने आती है देश पर आए। यहाँ पाठ बजाने आती है तो ये पराया देश है, अपना देश तो परम धाम है, देश पर आए। ये अर्थ कोई नहीं जानते, गीत तो सुनाते रहेंगे होंगे, सुनते भी होंगे, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, लेकिन बाबा कहते अर्थ नहीं समझते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वो सत सत कहते रहते हैं। तो तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, है खुशी उतनी। हाँ, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, इससे ऊंच दर्जा कोई होता ही नहीं है। कितने भी दर्जे हो, कितने भी पद हो, लेकिन इनसे ऊंचा पद नहीं होगा डबल सिरताज। चलो वो राजा का ताज भी मिल जाए, रतन जड़ित ताज, लेकिन लाइट का ताज तो नहीं होगा। तो इसलिए इनसे ऊंचा कोई पद होता नहीं, तो इनसे ऊंचा कोई दर्जा होता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूं, मैं नहीं बनता हूं, मैं आता ही हूं एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मैं शिव थोड़ी हूं, मैं शिव नहीं हूं, मुझे तो लखीराज कहते थे, इनका लौकिक नाम तो लखीराज था। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा, इन्होंने अपने आप नहीं अपने ऊपर नाम रखा। बाबा कहते शिव बाबा ने ये नाम मेरे ऊपर रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख योनियां जरूर होगी दुनिया में, उनसे भी ज्यादा होगी, किसने गिनती की होगी, कीट पक्षी क्या क्या कितने सारे हैं, परंतु मनुष्य आत्मा थोड़ी उन योनियों में जाती है। तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए। 84 लाख योनियों का ही बना समझो वर्णन भी करे तो एक 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 का तो कितने वर्ष लग जाए, सैकड़ों वर्ष। याद भी पढ़ न सके, कितना हुआ वो भी याद पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया गया है, जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे। भगवान का ज्ञान मनुष्य ही समझेगा ना, जानवर थोड़ी समझेगा। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए थे, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबर वार तो होते हैं ना, भले चढ़ती कला इस समय हम सबकी, लेकिन सबकी नंबर वार है, नंबर वार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है ही याद की। रात को जब सोते हो, बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, ख्याल करते भी होंगे पर बाबा फिर ध्यान खिंचवाते हैं, जिस समय रात को बेड पर सोने जाते हो तो उस समय ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, आपकी गोद में सो जाते हैं। बाबा कई बार ये भी कहते हैं, आपकी याद में सो जाते हैं, आपकी गोद में सो जाते हैं। गोया बाबा की याद में सो गए, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, बस गए बाबा, हम आपके पास आ रहे हैं परम धाम में। और सच मुझे एक सेकंड में नींद आ जाएगी, क्योंकि शरीर ही बन गए तो एक सेकंड में नींद आ गई। तो मुख्य बात है ही याद की। हम तो दादी जी को देखते थे, कैसे अभी हम लोग दादी के आगे मुरली सुनाते थे, दादी कहती थी आप पढ़ के सुनाओ, हम जाते थे, दादी मुरली पढ़ती होती रात को 10 बजे, तो हम जाते थे और दादी मुरली पढ़ती होती थी और दादी कहती थी किसने किसको कि मुरली सुनाओ, तो दादी मुरली सुनते सुनते एक मिनट भी नहीं लगता था और दादी कैसे विश्रामी हो जाती थी। एक दादी को बहुत अच्छी नींद आ जाती थी। तो हम भी बाबा कहते हैं बस ऐसे ही बाबा की याद में बाबा की गोद में सो, एक मिनट में नींद आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, चाहे स्वप्न भी आ जाए, सत्युग का स्वप्न आ जाए, स्वर्ग का स्वप्न आ जाए, बाबा की याद में सो गए तो हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बैठे बैठे भी कईयों को साक्षात्कार होता, बाबा कहते हैं इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है, बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाबा को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे नींद में। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकते। आत्मा अगर चली भी गई शरीर छोड़कर तो चलो सूक्ष्म वतन में गई, परंतु मूल वतन में तो अभी जा नहीं सकते। बाबा ने कहा ना अभी एंट्री वहां की खुली नहीं है, अभी तो एग्जिट ही है, वहां से नीचे ही आ रहे हैं। मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे, अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, आत्मा बिंदी का साक्षात्कार हुआ, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। हो सकता है परमधाम का भी साक्षात्कार हो जाए, छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, केवल साक्षात्कार हुआ, कोई वहां पर प्रैक्टिकल में तो नहीं जाएंगे ना। साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, ऐसे नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। सत्युग में जाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़े, केवल साक्षात्कार हुआ तो चले गए सत्युग में, ऐसे नहीं। तुमको तो समझाया जाता है पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएगी। जब आत्माएं घर जाएगी तो यहाँ पाठ बजाने से मुक्त हो जाएगी। जब तक आत्मा पवित्र न बनी है तब तक तो जा न सके, बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को कितना साक्षात्कार हुआ, वो तो सारा दिन राशि करती रहती थी श्री कृष्ण के साथ, कितना साक्षात्कार हुआ। वैकुंठ में चली थोड़ी गई, वैकुंठ में चली नहीं गई, वो तो यहाँ ही थी, वैकुंठ में चली थोड़ी गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है, अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, बाबा मना करते थे इतना ध्यान आदि में नहीं जाओ, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी हाँ विनाश तो सामने खड़ा है वो तो ठीक है, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वो आपस में लड़ते हैं, वो आपस में लड़ते हैं किसके लिए। बाबा कहते हैं अमेरिका रशिया आपस में लड़ेंगे, या दो गुट वो लड़ते हैं, वो लड़ते हैं तुम्हारे लिए। सुना, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ाइयां चल रही है, तुम्हारे लिए। क्यों तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। तो नई दुनिया चाहिए तो वो विनाश करेंगे, तभी तो नई दुनिया आएगी ना हमारे लिए। परंतु बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, बाकी तुम्हारी लड़ाई नहीं है किसी के साथ, तुम्हारी लड़ाई है किसके साथ, केवल माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, बहुत नामी ग्रामी योद्धे हो। कैसे नामी ग्रामी योद्धे हो, हाँ गीता में प्रसिद्ध हो, महाभारत में प्रसिद्ध हो, शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, तो देवताओं की लड़ाई लगी या पांडवों की, तो वास्तव में ये थे तो माया से लड़ाई ना। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत नामी ग्रामी प्रसिद्ध वॉरियर्स हो, हाँ योद्धे हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां भी इतनी क्यों गाई जाती है। उनको भी तो योद्धा दिखाया है ना, असुरों को मारा, तो क्यों इतना, बाबा कहते हैं इतनी देवियां क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तो देवियों ने असुरों का नाश किया, तो ये तुम्हारा ही गायन है। तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था, महाभारत में तो प्रसिद्ध है ना, तो जरूर पहले हुआ होगा ना, कहेंगे भाई 5000 साल पहले हुआ था, तो पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी उस समय, महाभारत लड़ाई जब लगी थी तो उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे, अर्जुन को उस समय राजयोग सिखाया, तो राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना, बाप ही तुमको सच बताते हैं, सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो, ये है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको सामने बैठना चाहिए, सुना, किसको बैठना चाहिए बाबा के सामने, जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको तो उबासी आएगी, समझ जाते हैं ये कुछ भी समझते नहीं है, ज्ञान की कुछ, ज्ञान को कुछ भी समझे नहीं, समझेंगे नहीं तो वो क्या करते हैं, जो नहीं समझते हैं ज्ञान को तो फिर इधर उधर देखते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है, जो जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी, हमको भी डांस करना है, तो ये है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, श्री कृष्ण ने ज्ञान डांस नहीं किया, वो डांस तो करता होगा लेकिन ज्ञान डांस श्री कृष्ण ने नहीं किया, पूर्व जन्म में जरूर किया। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, ब्रह्मा बाबा तो जब खुश होते थे, हाँ मैं मिष्णु बनूंगा मिष्णु बनूंगा, तो गद्दी पर बैठ के जैसे बाबा कंधा हिलाते थे जैसे डांस कर रहे हूँ। तो देखो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो ये ज्ञान की है ना, तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते करते चक्र को बुद्धि में याद करते रहो, बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, जब यहाँ माउंट आबू आए तो बाबा की पहाड़ी पर बच्चों को ले जाते थे बाबा, और कब्रिस्तान बनाते थे, सबको लिटा देते थे और लेट जाते थे, और मम्मा बाबा वो लेटी होती थी बहनें, और मम्मा बाबा दृष्टि देते थे, और दृष्टि देते जाते थे, कई मम्मा बाबा की दृष्टि लेते लेते ध्यान में चली जाती थी, फिर तो वो उठ करके ऐसे रास करती थी, परंतु डर लगता था कहीं गिर न जाए पहाड़ से, तो फिर उनको वापस बुलाते थे, बहुत होता था। तो बाबा कहते आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे, तो जो बाप को जानते ही नहीं तो वो याद कैसे कर सकेंगे, मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है, तुम हो गुप्त वॉरियर्स, गुप्त योद्धे। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। कल विवाह बने का ना खड़ग, तुमको तो किसने मेरे से पूछा खड़ग क्या होती है, तो खड़ग भी एक प्रकार की तलवार ही है ना, तलवार ही है खड़ग, उसकी कहते हैं अलग प्रकार की तलवार है। तो बाबा कहते हैं तलवार बाण आदि दे दिए हैं, तुम वॉरियर्स हो योग बल के। एक स्थान है ये उत्तराखंड में या ये क्या नाम बिहार के पास, तो वो वहां पर खड़गपुर है, तो खड़गपुर में वहां पर वो दिखाया है, खड़गपुर हम गए थे तो देवियों को खड़ग दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं, तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। सारी दुनिया को बाहुबल से, हथियारों के बल से कोई जीत पा नहीं सकता। भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। तो उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं, हाँ बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता है, तो बाबा उनको क्या कहते हैं, ये योग अक्षरी उड़ा दो, बाबा मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। बाबा कहते हैं योग शब्द ही क्यों बोलते हो, योग अक्षरी उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, बच्चा बन जाओ, बाबा को याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर क्या होगा, तब फिर आत्माओं की बरात निकलेगी। सतो प्रधान बन गई, फिर आत्माओं की बरात निकलेगी घर जाने लिए। फिर आत्माओं की बरात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बरात होती है ना, देखिए टिड्डियों की बरात होती है, टिड्डियां जब आती है तो वो इतनी दौड़ती है और लाखों पता नहीं करोड़ों होंगे एक साथ और दिखाई देती है। मैंने देखी थी, मैं मुंबई में तब घर में रहती थी, तो अनाउंस हुआ था कि टिड्डियां आएंगी मुंबई में, तो हम खिड़की हम बालकनी में खड़े हो गए और सचमुच उसी समय टिड्डियां इतनी ढेर के ढेर पता नहीं सीधी उड़ गई, एक सेकंड में कितनी उड़ गई करोड़ों, और फिर जाकर के कोई खेतों में गई होगी, और एक बार खेतों में गई पूरा खेत को खा जाती, ये टिड्डियां ऐसी होती है। तो बाबा कहते हैं तो परमधाम में भी तो आत्मा ही जाएगी तो कैसे उड़ेगी। तो जैसे मक्खियों की बरात होती है ना, ये है शिव बाबा की बरात। शिव बाबा सबसे ऊपर और फिर उसकी बरात, इसलिए शिव की बरात गाई हुई है ना, शंकर की दिखाते हैं। तो ये शिव की बरात है, शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ ही रह जाएंगे, सब जल जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। हाँ करते हैं सब मीठी मीठी बातें बाबा से, नहीं करते हो तो अभी करना आज से। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरा, पांच विकारों की बीमारी से बचने के लिए क्या करना होगा, मन और शरीर, तन और मन के रोग से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख शांति व ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। स्लोगन, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक ये देह है कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो तब तक कर्म करते कर्म इंद्रियों का आधार लो और फिर न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत भाई बहने आ गए हैं, नीचे से भाई बहने आए हैं। कर्नाटक जोन की इस बार सेवा है। जो कर्नाटक के भाई बहने आए हैं हाथ उठाओ। देखो कितने आ गए हैं कर्नाटक वाले। एक दिन के लिए ऊपर, आज से इनको नीचे ड्यूटी मिलेगी, है ना। ओम शांति, भले पधारे। ओम शांति।